आप लोग के उत्साह से जो ये कथा सत्र का आज फोर्थ चतुर्थ पर्याय है, उसमें नारद जी के दौरा चालू है, ट्रैवलिंग उनका अब उन्हें अंधी रोड है। तो हम सुबह सत्र में चर्चा किए थे कि नारद जी ने ब्रह्मलोक जा करके ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा पात्र मान करके और उनके जब प्रशंसा किए तो ब्रह्मा जी किस प्रकार नारद जी को डांटे और उन्होंने भली प्रकार से ये प्रमाणित कर दिए कि उन्होंने भगवान की कृपा पात्र नहीं। और नारद जी की ये ट्रैवलिंग को देख करके ब्रह्मा जी ने उनको ये सलाह दी कि अगर नारद आप जानना चाहते हैं तो सचमुच मैं बताता हूँ कि भगवान की कृपा तो शंकर के ऊपर है। और हम सुबह सत्र में शंकर जी की महिमा का कुछ चर्चा किए थे। हम क्या किए थे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए थे और बोले कि नारद तुम उससे और भी जानते हो, ऐसा बात नहीं कि तुम नहीं जानते, तो इसलिए तुम अब ब्रह्मा शिव जी के पास आओ। और तो तुरंत परीक्षित महाराज बोले माँ इस बात को सुनकर के नारद जी तो तुरंत और वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए कैलाश सदाशिव लोग। तो ब्रह्मा जी बोले नारद क्या, अरे आजकल वहाँ नहीं है, वो तो यहीं है। बोले इतने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है, वो तो यहाँ रहते हैं आकर के, वहाँ वैकुंठ छोड़ के यहीं रहते हैं आजकल, तो जाना तो यहीं जाओ। तो नारद जी ने सीधा ब्रह्मलोक से उस इस भौतिक ब्रह्मांड स्थित जो कैलाश है उस कैलाश में गए जो कुबेर के क्षेत्र में है। तो यहाँ जब पहुँचे इस कैलाश क्षेत्र में तो तभी उन्होंने देखे दूर से कि भगवान शंकर ने अपने परिकर के साथ अपने सपत्नी अपने इष्टदेव भगवान शंकरषण का पूजा आराधना कर चुके थे। पूजा करके भली प्रकार से उनकी आराधना करके और अभी पूजा खत्म करके कीर्तन शुरू करने जा रहे थे। उनके श्रृंगार पूजा माल्य अर्पण आदि सब करने के बाद अब उनके कीर्तन करने जा रहे थे। नारद जी ने पहुँचे तब वो कीर्तन शुरू कर दिए थे। जब भगवान शंकर कीर्तन करना शुरू किए तो उनके परिकर नंदीश्वर आदि मृदंगकर्ता लेकर के साथ दिए, माता पार्वती ने ताली बजाई और शंकर ने स्वयं गाते थे। तो इस प्रकार नाम कीर्तन किए, भगत महिमा नाम कीर्तन कर रहे थे। तो नारद जी इसी समय पहुंचे जब उनका कीर्तन शुरू हो चुका, सब उछल कूद के कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी पहुंचे, देखे कि भगवान कीर्तन शुरू कर दिए, सब कीर्तन कर रहे हैं। तो उन्होंने अब शंकर जी को प्रणाम किए, अब झुक करके प्रणाम नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि सब कीर्तन कर रहे हैं ना, नाच रहे हैं, कोई चढ़ ना जाए। तो इसलिए ये शिक्षा मिलता है कि अगर संकीर्तन हो रहा है तो जाकर दंडवत प्रणाम यहाँ नहीं करना। अधिकांश आप देखते हैं मंदिर में चले जाते हैं, भीड़ है, ऐसे कीर्तन चल रहा है, अब इसे वहाँ जाके सभी के सामने ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ करके मारेंगे दंडवत कि लोग देखें मैं इतनी भक्त हूँ, यहाँ भी आकर के ऐसे दंड में सबके सामने, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान तो प्रसन्न नहीं होंगे तो दूसरे भक्त ही प्रसन्न होंगे, अरे काहे को डिस्टर्ब कर रहे हैं आकर। तो इसलिए नारद जी भी जब देखे कि सब संकीर्तन में लगे हैं तो उन्होंने भी केवल मस्तक झुकाकर प्रणाम कर लिए, नहीं तो भगवान शंकर को बाकायदा प्रणाम करना चाहिए था। लेकिन परिस्थिति अगर इस प्रकार नहीं है तो इसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम जाते हैं आजकल मंदिर, सबसे आगे हम जाना चाहते हैं, सबसे आगे, जितने आगे जा सकें, कोई न्याय से हो, अन्याय से हो, किसी प्रकार से हो, सबसे दी फ्रंट लाइन में होना चाहते हैं। लेकिन आप मैं सच बात बताऊं, भगवान विष्णु के, विष्णु तो तुम्हें जितने भगवान हैं, उनका एक स्वभाव है, भगवान हमेशा दूरदृष्टि संपन्न है, उनका नज़र बड़ा दूर तक जाता है। वो अपने आसन में बैठते हैं, पास वाले को कभी देखते ही नहीं ना, ये हमेशा उनका नज़र दूर पर पड़ता है। सचमुच पास वाले का नज़र जाएगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान के ये स्वभाव को जो जानते हैं, जो भगवान से स्वभाव से परिचित हैं, वो कभी निकट नहीं आते। आप देखेंगे कोई भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान के कैरियर भगवान वाहन गरुड़ जी और निकट जाते हैं, वो दूर किसी का। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं वो दूर रहते हैं, तो और उनके नज़र भी भगवान सीधा दूरदृष्टि से देखते हैं। आप एक घटना शायद सुने होंगे, जब महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण को अपने तरफ में लेने के लिए, अपने पार्टी में लेने के लिए दुर्योधन भी प्लान करके चले थे। दुर्योधन का रिलेशन होंगे कृष्ण, पता ना, उनके समधी है, पता ना। दुर्योधन के बेटी लक्ष्मणा को सांब ने शादी किया था, जाम्बवती के बेटा सांब ने, भगवान के खुद पुत्र का साथ उनका शादी हुआ था दुर्योधन के बेटी के साथ। वो बड़े कहानी है, हिस्ट्री है उसका, लड़ाई झगड़ा हुआ था शादी में, लेकिन हुआ था शादी अल्टीमेटली, उसके लिए क्या क्या नहीं हो गया। तो जो भी हो, शादी हुआ था इसके कारण से समझे, यद्यपि वो खुश नहीं था, दुर्योधन खुश नहीं थे, पूरे उनके पार्टी के लोग कोई खुश नहीं थे, बहुत झगड़ा हुआ, सांब को अरेस्ट कर डाले थे इस कारण से। लखनऊ राजी थी, उनके शादी हुआ लेकिन वो छोड़े नहीं, युद्ध हुआ अरेस्ट करके रखे थे। तो वो तो जादव सैन्य जाते थे लड़ाई करने, कुरु और जादव का महान युद्ध छेड़ गया था। बलराम बोले नहीं नहीं मेरे चेला है, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। बलराम जी ने मध्यस्थ करके उनको सब बोले, कृष्ण को डांटे, बोले नहीं मैं जा रहा हूँ आपके, बोले ठीक है आप अगर कर ले तो कोई बात नहीं तो बेटा को अरेस्ट करके रखा है उन्होंने। तो उन्होंने बलराम जी ने आए, दो चार सेवक साथ में लेकर आए थे, बोले नहीं दुर्योधन को मैं जानता हूँ, वेरी ओबीडियंट, मेरी बात मानेगा। आ करके हस्तिनापुर के पास में यमुना किनारे बैठ करके एक लेटर भेजे, बोले दुर्योधन बेटा ऐसा करो, मैं आ चुका हूँ, बैठा हुआ, तुम आओ, आप मुझे मिलो और ऐसे ऐसे करो, ये ठीक नहीं है, नॉट ऐसे ठीक नहीं है ऐसा करना, अब लक्ष्मणा को सांब को लेकर आओ, समाधान करो। जैसे खबर भेजे दुर्योधन के पास, दुर्योधन वो चिट्ठी को उठा कर फेंक दिया, बलराम के लेटर को, बोला अरे ये जदुवंशी, हाँ क्षेत्रिय है, आप बैठ कर ऑर्डर देने लगे, अरे जूते को हम थोड़ा टेक केयर करे, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिश करे, वो सर में बैठेगा, इस प्रकार की भाषा था दुर्योधन का। और जो मैसेंजर आया था वो जाकर, तो दूध है, वो जाकर के रिपोर्ट कर दिया बलराम को। बलराम जी बोले क्या ऐसे क्या ना, राव जी ऐसे ही बोला। बलराम जी की तुरंत गुस्सा चढ़ा, बोले दुर्योधन को क्या, संपूर्ण जदम हस्तिनापुर को उठाकर फेंक दू जमुना गंगा जी में, अपने हल से उखाड़ना शुरू किया, बोले उखाड़ के सीधा गंगा में फेंक दू, पूरा टोटल सिटी को उठाकर फेंक दूंगा, जा खत्म। जब सिटी को उठान हड़ में खींचने लगे, वो अर्थक्वेक होने लगा, अरे क्या क्या क्या, इसी सब डकमान सब मकान दुकान सब गिरने शुरू हुआ। अरे बोले बलराम जी ने खींच कर उखाड़ फेंक देना चाहते, अरे दौड़ो दौड़ो भागे, तब बुद्धि आया, आप जा करके भेंट ला करके दंडवत प्रणाम किए, गलती हो गया माफ़ करो सरकार, आप गलती माफ़ करो। तो ये भी केस हुआ था, इसी केस में तो उनके संबंधी थे, तो इसलिए दुर्योधन राजा तो था ही, तो अपने रयाल गाड़ी लेकर के वो भी आया था, अर्जुन के सखा तो है ही है, तो अर्जुन भी आए। युधिष्ठिर महाराज भेजे कि आप जाओ, कृष्ण को इन्वाइट करो अपने तरफ से। तो अर्जुन तो अभी जंगल से बनकर आए थे, राजा पोष होंगे, धन नहीं था, गरीब थे बेचारे, वो आपने शायद ऑटोमोबाइल भी नहीं आए होंगे, ओला भी तो था नहीं, तो पैदल में आए होंगे जरूर, और किसे आए है ना, नहीं तो भी गए, वो लेट में पहुंचे और पहले पहुंच गए थे, दुर्योधन तो अपना रथ था, दुर्योधन पहुंचे तो भगवान तो विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम कक्ष में, क्योंकि उनको तो कोई रुकेगा नहीं, वो तो समधी है, तो चले गए सीधा, देखे कि भगवान के बेडरूम में सोए हैं, तब बोले सोए हैं, वो क्या डिस्टर्ब करो, चलो उठने बात करूंगा, तो एक चेयर खींच करके उनके सराहने के पास बैठ गया, जाते सर के पास चेयर खींच कर बैठ गया, बोले उठेगा देखेगा बात करूंगा। तो थोड़ी देर के बाद अर्जुन पहुंचे, अर्जुन की सब जानते हैं, उनके निजी लोग है, सखा है, उनके मित्र है, तो कोई रुके नहीं, अर्जुन भी चले गए बेडरूम में, जाके देखे कि दुर्योधन बैठे हैं, आप दोनों के दोनों से बातचीत नहीं होंगे। ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको, मेंटेन करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत प्रणाम कर लिए होंगे एक दूसरे को, जो भी हो हाथ उठा दिए करके, फिर अर्जुन ने जाकर सीधा श्री चरण के पास बैठे, बोले भगवान लेटे हुए हैं और कोई सेवा तो हो जाए, चरण सेवा, तो भगवान ने चरण के पास बैठ करके, भगवान के चरण के पास अर्जुन बैठ करके और धीरे धीरे पद सम्मान करने लगे। थोड़ी देर भगवान का निंद्रा खुला, नींद खुलेगा तो आप बताए सबसे पहले नजर किसके ऊपर पड़ेगा, जो सर के पास पैसे उठ के पास ना, जो पैर के पास, कहाँ नजर जाएगा, पैर तो दूर है, वो तो नजदीक बैठे थे, वहां नजर जाएगा हमेशा। तो अर्जुन को देखे और उनसे बातचीत की, दुर्योधन बिल्कुल गर्म हो गया, ये क्या कर रहे, मैं पहले 2 घंटा पहले आके बैठा हूँ और उससे बात कर रहे, मुझे पूछते नहीं, पढ़े दिस, भगवान बोले गुस्सा करने से क्या होगा, मैं तो उन्हीं को देखा, मुझे पता कि तुम आगे बैठे इधर, तो इसलिए ऐसे नहीं कि जो भगवान के सामने, यहां तक कि भक्ति के प्रावधान में एक नियम है कि भगवान के पास में वामांगे पृष्ठभागे च समीपे गर्भ मंदिरे जप होम नमस्कारम न कुर्यात् केशवालये हरिभक्ति विलास। यहाँ तक कहा गया कि भगवान विष्णु तत्व के मंदिर में उनके वाम भाग में भगवान के राइट साइड से प्रणाम करना चाहिए, हाँ कि इस साइड से नहीं करना चाहिए, वामांगे पृष्ठभागे भगवान के पीछे नहीं प्रणाम करना चाहिए, भगवान के बाएं साइड में नहीं, भगवान के पीछे नहीं, वामांगे पृष्ठभागे च समीपे उनके पास में जाकर नहीं करना चाहिए, और उनके जो अल्टर रूम पूजा रूम गर्भ मंदिर वहाँ क्या नहीं करना चाहिए, जप होम नमस्कारम न कुर्याद केशवालये भगवान केशव भगवान विष्णु के आलय में मंदिर में, ये 3 काम बाएं साइड में भगवान की वाम भाग में, भगवान की पास में, भगवान के पीछे ये और समीप में ना जप करना चाहिए, ना यज्ञ हवन करना चाहिए, ना प्रणाम करना चाहिए, ये 3 मना कहेगा, भगवान पसंद नहीं करते पास में आकर डिस्टर्ब करने से, ना दूर जितने करे रहे तो उसको देखते हैं, जो नई बात नहीं जानते हैं वो तो बिल्कुल नजदीक जाना चाहेंगे, लेकिन नजदीक जाने से भगवान का नजर नहीं पड़ेगा, दुर्योधन की तरह घंटों जाकर गुरु करके नहीं चलेगा, वो जो दूर रहा उसी का नजर पड़ेगा भगवान। तो इसलिए यहाँ श्री नारद जी भक्ति के आचार्य उन्हें सिखा देते हैं, जब इस प्रकार कीर्तन करते हैं, सब उठ करके नाचते हैं गाते हैं, वहाँ जा करके फिर ऐसे दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए झुक करके बस मस्तक झुका कर प्रणाम किए और गए, जाके कीर्तन में शामिल हुए, लोग भी कीर्तनिया थे, बिना बजा कर गाने लगे, धीरे धीरे कीर्तन करते करते जब शंकर जी के पास पहुँचे, पास में जा करके उनके नज़दीक जब आ गए, तब झुक करके उनके चरण छूना चाहते, ये भी थी, और दूर से तो ऐसे मतलब नमस्ते प्रणाम के, और नज़दीक गए, नज़दीक जहाँ के बड़े तो बड़े सीनियर हैं महादेव शंकर, तो जा करके उनके चरण स्पर्श करना चाह रहे, जैसे उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुके, भगवान शंकर ने देख लिया, देख करके बोले हे ब्रह्मा पुत्र, हे ब्रह्मा पुत्र क्या कर रहे, क्या कर रहे, के उठा करके उनको छूने नहीं दिए, पैर उठा करके आलिंगन ले लिए, गले मिले, बोले ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, उठा। अब जब भगवान शंकर, तो पता नहीं था, वो तो मत में थे, कृष्ण के नाम कीर्तन में इतने मग्न थे, उनको पता नहीं, जब वो पैर छूने, जब झुके मुड़ कर देखे, बोले ये क्या, अरे नाराज तुम, उठा कर गले मिले, मिल करके अब सबने से वो बंद कर, बंद करो कीर्तन, बंद करा दिए, तुरंत कीर्तन बंद करा दिए। माता पार्वती ताली बजा कर गाती थी, शंकर जी खुद गाते नाचते थे, बाकी सारे नन्नी भृंगी आदि थे परिकर, सब सबको बंद कर, स्टॉप। बोले अरे बड़ी सौभाग्य से संत मिलते हैं, अब नारद जी जैसे परम भक्त भगवान के मिले, अब हम ये काम में लगेंगे, उनके नाम मिल करके नहीं, उनके संभाषण को, उनसे बातचीत का, कभी वो किस लिए आए हैं कुछ, तो इसलिए सारे स्टॉप कर दिए, प्रोग्राम स्टॉप करके उनसे मिलने के लिए बैठे, जा करके अपने तपस्वी युक्त आसन में, वीरासन में बैठ गए। बोले आपको से बैठना तो बैठाओ, नहीं तो मैं आया हूँ डॉक्टर नारद जी, वो किस लिए आए हैं, उनको आलिंगन लेकर बैठ गए। देखिए ये एक एक चीज में ये सब शिक्षा प्राप्त होता है। ऐसे कहा गया भक्ति के नियम में, अगर कोई ऐसे अच्छे भक्त कोई आ जाते हैं, अगर आप भगवान की आरती करते हो अल्टर में, अब नजर पड़ा कोई एक उच्च भक्त आए हैं, तो नियम तो ये कहता है कि आरती को ही छोड़ करके अल्टर से बाहर आ करके उनको प्रणाम करना चाहिए, और उनको पूछना चाहिए क्या करूं, फिर बाद में जा करके करना चाहिए। ये भगवान की शिक्षा। यहाँ तक ये घटना ऐसे हुआ था कि एक पुजारी ने अभी अफरिंग शुरू करने जा रहा था, अब अफरिंग प्लेट लेके लगा दिया है, अफरिंग रख करके, आचमन करके, तुलसी पत्ता डाल करके अभी मंत्र शुरू करने जा रहा है, कवाट बंद कर ही रहा था, डोर क्लोज कर ही रहा था, और इसमें नजर पड़ा किसी ने एक सीनियर भक्त आए, तो उन्होंने अफरिंग छोड़ करके, भगवान बैठे खाने के लिए, छोड़ करके वापस आया, आ करके उनको पूछा क्या बात है, ना मुझे आया हूँ तो बहुत भूख लग रहा है, कि बस तो हम तो कहते कि अभी भूख लग रहा है, वेट करो बैठो, ये नहीं कहे, भगवान अभी भोग प्लेट लगा है, उनको भोग ना लगा करके पहले उनके भोजन का व्यवस्था किया, और उनको भोजन कराया, भोजन कराने के बाद फिर एक डेढ़ घंटा जा करके फिर भगवान को भोग लगाया, उसी में भगवान प्रसन्न हुए, बोले यू आर राइट, आप सही किया। ये इतना भाव है भक्ति में, जो भक्तों के साथ संबंध ऐसे होना चाहिए, ये भक्ति की नीति है। तो इसलिए शंकर ने तुरंत प्रोग्राम बंद कर दिया, जो सब मिल करके शंकर शरण के लिए विशेष कीर्तन शुरू हुआ था, उस कीर्तन प्रोग्राम तुरंत स्टॉप कर दिया। बोले ना, बोले जिसको जहाँ जाना है कहीं बैठना तो बैठना, कहीं जाओ, नारद जी अब आए हैं आज विशेष, उनके साथ परम भक्त है, उनके साथ संभाषण का सुजोग, इतने बड़े सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसलिए मैं अभी कीर्तन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यदि वो भी कीर्तन या कुछ कीर्तन कर ले, नहीं नहीं किस लिए, बैठ करके स्वयं वीरासन में अपने आसन पर बैठे, और नारद जी को बोले बैठे क्या बात है कैसा है, और नारद जी का कोई काम तो था नहीं, नारद जी किस काम के लिए गए थे भाई, उनको बड़ाई करने के लिए तो गए थे इतने सुने ब्रह्मा जी से, वो तो इसलिए गए थे कि शिव जी साक्षात भगवान के कृपा के एकमात्र पात्र है, और उनको मैं भर करके प्रशंसा करूं, उनके कृपा प्राप्त करूं, इसीलिए तो गए थे। शिव जी को पता नहीं नारद जी किस काम के लिए आए थे, जो जैसे शिव जी बैठ गए, नारद जी बोले अब बताइए ब्रह्मपुत्र कैसे आना हुआ, क्या बात है, आप आए हैं तो आपसे मैं, तो नारद जी तुरंत उच्च स्वर में भगवान शंकर के गुण महिमा गाने लग दी, जो ब्रह्मा जी से सुने थे अभी अभी सब बोलने लगे, हे प्रभु आप तो साक्षात भगवान कृष्ण के परम कृपा पात्र है, आप ही अभी मैंने खुद देखा, अभी तक तो मैंने आपके बारे में खुद सुना था, लेकिन अभी तो मैंने खुद देखा आपने कितने साक्षात भगवत स्वरूप होकर भी आपने भगवान के प्रति कितने प्रेम से आपने उनकी पूजा किए, आराधना स्तुति करके स्वयं कीर्तन कर रहे थे, धन्य है आप, धन्य है आप, तो साक्षात भगवत अंश है, साक्षात भगवान ही है, आप जगदीश्वर है, ऐसे कह करके और वो स्तुति पाठ के षडरुद्रांग स्तव रुद्रस्तव पाठ करने लगे। तुरंत रुद्रस्तव पाठ की, रुद्रस्तव पाठ के वो स्तव पाठ के जिस स्तव में भगवान को साक्षात जगतेश्वर ईश्वर करके कहा गया, ऐसे उनके पाठ किए, आप तो साक्षात ईश्वर है, आप नियंता है, ऐसे ऐसे करके जब उन्होंने किए तो भगवान शंकर जो बैठे थे, बैठ करके उनसे बातचीत करने के लिए बड़े मन में बड़ा उत्साह था कि इतने दिन के बाद इतने बड़े भक्त नारद जी आए हैं, उनसे मिलूंगा। लेकिन नारद जी जब इस प्रकार उनसे प्रशंसा करने लगे, शिव जी बड़े डिस्टर्ब फील किए, डिस्टर्ब फील करके चिल्लाकर बोले, हे नारद चुप करो, ना तो मैं जगदीश्वर हूं, ना तो कृष्ण के कृपा पात्र ही हूं, दोनों ही नहीं हूं, आप क्यों इसे बोलते हैं झूठ मूठ। मैं तो पूरी प्रयास ही करता हूं उनके दास, उन्हें दास तो बन ही नहीं सकता हूं, उनके दासों की दासों की दासों की कृपा मुझे मिल जाए इसी के प्रयास में पड़ा हूं, आप क्यों इसे बात कर रहे हैं। ऐसे डांट करके चिल्ला करके बोले शिव जी, बड़े डिस्टर्ब फील किए। तो नारद जी डर गए, बोले बाप रे बाप, डरे हुए हैं, गुस्सा हो गए क्यों, मैं तो पापा से सुना था ये बात कर रहा हूँ, गुस्सा हो गया क्यों। बोले भाई साहब इतने गुस्सा क्यों हो रहे, ना तू ऐसे क्यों बोल रहा है। तो नारद जी ने चुप हो गए, बोले शायद गड़बड़ हो गया, गुस्से हो रहे हैं, ऑफेंस ना हो जाए। तो थोड़ा चुप हो गए तो शिव जी चुप गए डांट करके। तो नारद जी को चुप हो करके फिर बोलना था, बोले क्या बात है ना, देखिए शंकर जी ये तो निश्चित बात है, ये बात तो नहीं मानेंगे ना, मैं ठीक ये बात नहीं कहूंगा, अब ये जो स्तव स्तुति थी रुद्र स्तव बंद कर दिए। बोले ये तो निश्चित बात है कि आप श्री कृष्ण के तत्व को और उनके भक्त के महिमा को ठीक आप ही जानते हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। भगवत तत्व भक्ति तत्व भगवान के भक्तों की पहचान आपको पूरा पूरा है, क्या बताऊं भगवान के भक्ति भक्त के बारे। अरे भगवान तो साक्षात अनेक बार आपके आराधना किए हैं, आपके पूजा किए हैं, अनेक बार आपसे वर प्राप्त किए हैं, किए नहीं आपसे वर प्राप्त किए हैं, और आपको ईश्वर मानते हैं। तो आप ऐसे भक्त हैं, और आपको जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता जिस मुक्ति को आकांक्षा करते हैं, भगवान ने आपको इस मुक्ति देने का अधिकार दे दिए हैं। इस प्रकार जब बोलने लगे तब शंकर जी के बैठे थे, अब बोलो डांट उसने बोली, फिर भी ये बात बोलने लगा। अब शंकर जी को रहा नहीं गया, उठ करके आसन से, अपने आसन से उठ कर खड़ा हो गए, उठ करके चले गए नारद के पास, जाकर मुंह में हाथ बांध के बोले स्टॉप योर माउथ टॉकिंग नॉनसेंस, उनके मुंह बंद कर दिए, बोले बंद करो मुंह तेरा, ये बात कर रहा है तूने मेरे सामने। देखिए जो सच्चे भक्त होते हैं, आपने बड़ाई कतई सुन नहीं सके, इंडाइजेशन हो जाएगा उनको, ये शंकर जी सिखाते हैं अपने आचरण से। पहले डांटे जाकर मुंह बंद के बोले स्टॉप इट, ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल सकता है कि मैं कृष्ण के कृपा पात्र हैं। नारद आपको क्या पता नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तब शंकर जी बोलना शुरू किए, बोले हे नारद अगर आप बोलते हो कि भगवान मेरे ऊपर कृपा किए हैं, मैं उनके भक्त हूं, अरे वो तो केवल उनके भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, भक्त अवश्य सर पुरुषः। आप बोलते हैं कि अगर भगवान के मेरे साथ संबंध अच्छा है और मुझे इतने प्रेम करते हैं, मुझे तो जिसको कोई प्रेम करता है तो उनके साथ झगड़ा होगा, आपको पता है दो बार मेरे साथ बाकायदा अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ाई हुआ। हाँ बोले एक पारिजात हरण में, एक उषा हरण में, दो प्रसंग ऐसे हैं वो हम बिल्कुल सामना सामनी सम्मुख युद्ध किए। अब कृपा मानते मेरे पर उनका कृपा होता, मैं और उनका भक्त होता, मेरे उनके संबंध होता, मैं उनके तत्व को जानता, ऐसा कभी होता। इस प्रसंग को देख करके समझाते हैं शंकर जी, बोले बोले आपको पता है उषा ने बाणासुर के बाणासुर तनया, बाणासुर के बेटी का नाम बाणासुर जानते ना, शोणितपुर के राजा थे बाणासुर। तो उनके एकलौती बेटी का नाम था उषा राजकुमारी। एक दिन उनको सपने में अनिरुद्ध का दर्शन हुआ, सपने में। क्या पता नहीं कैसे पहले देखे थे क्या नहीं, जैसे हो जो स्वप्न में अनिरुद्ध देखे। स्वप्न में अनिरुद्ध, अनिरुद्ध साक्षात भगवान के पुत्र है, प्रद्युम्न के पुत्र है, प्रद्युम्न कामदेव है, कामदेव के पुत्र है अनिरुद्ध। इनके रूप को देख करके उषा तो विकल हो गई, विकल होकर रोने लगी। इतने सुंदर पुरुष, इतने सुंदर पुरुष, तो उनके सखियों के लिए रात को उठ करके रोने लगी, रोने लगी। स्वप्नों को देख करके वर्णन करने लगी, मैं क्या करूं और जीवन रक्षा नहीं कर सकती, इतने विकल होने लगी। तो उनके एक सखी थी जिसके नाम था चित्रलेखा, जिनको योग सिद्धि थी चित्र करने में। आप केवल बता दो, वर्णन करो, वो हूबहू चित्र बना देगी, ऐसे चित्र बना देगी जिसके बारे में सोच रही उसी के बारे में बना देगी। उन्होंने चित्र बनाया वही रात रात, रात रात उन्होंने उनके सामने जो वर्णन सुना, ऐसे पुरुष का रूप मैंने दर्शन किया स्वप्न में। बोला कोई बात नहीं, अब मैं बता। ओ बना करके चित्र दिखा दी, बोली ये, बोले अरे यही तो है। आप तो प्रलाप करने लगे, पागली हो गई, कैसे उनको प्राप्त कर सकती हूँ, कैसे कर पाऊँ, कैसे, हे चित्र लिखे, हे मेरे सखी, ऐसे रोने लगी। बोला चिंता मत कर, अब कर पाऊंगा व्यवस्था। जो चित्र लिखा के योग सिद्धि था, उन्होंने ओवरनाइट सोते सोते अनिरुद्ध को उनके बेडरूम से उठा करके ओवरनाइट ट्रांसफर करके ले गया। उनको पता भी नहीं चला, पता ना चला, सोते सोते अवस्था में उनके पलंग से राजकुमार अनिरुद्ध को हाईजैक कर लिया। ना कोई प्लेन में बोर्डिंग रिजर्वेशन, ना कोई टिकट खरीदा, कुछ भी नहीं पड़ा, सीधा बाई एयर उठा लिया हम ये शक्ति से। अनिरुद्ध को पता नहीं चला, तो सोए हुए थे घर वाले, सोए, मिडनाइट था, पूरे द्वारका में सब सोए हुए थे, सारे सुरक्षा वाहन सब कुछ था, लेकिन ये तो ऊपर से उठा कर बिल्कुल जो शक्ति से बेडरूम से उठा कर ले गया और लेकर के उनके बेडरूम में डाउनलोड किया। हाँ, सीधा ना बाणासुर के राज्य में उनके सिक्योरिटी एजेंसी कोई किसी को ना पता चला, ना द्वारका में किसी को पता चला। दोनों बहुत टॉप क्लास का स्टेट था, किसी को नहीं पता चला। ऐसे गुप्त रूप में उनके बेडरूम से उठाकर उनके बेडरूम में लेकर छोड़ दिया सीधा। और उषा ने जब देखा उनके अविष्ट पुरुष देख करके बहुत प्रसन्न हुई, वही उनका गंधर्व विवाह हो गया इस रूप में चित्रलेख के सामने, और रहने लगे। बट आप उनके साथ रहने लगे, थोड़ी दिन के बाद उषा के स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ गया गर्भवती का। तो जो सिक्योरिटी थे, पहरादार थे, वो आकर के वाणासुर को बोले, बोले महाराज देवी उषा तो गर्भवती हो चुकी है। वाणासुर चौंका, बोले कैसे, अभी तो उनका शादी तो फिक्स नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। अब तो बहुत गुस्सा हुआ, मैं शक में गया, अब जा करके उनके बेडरूम की जांच किया, देखा कि ये निकले अनिरुद्ध है। अब तो अनिरुद्ध के अरेस्ट करके नाग पास में बांध लिया उनको, बाणासुर बांध करके रखा। अब उषा कितने भी बोला नहीं छोड़ा, तब भी उनको अरेस्ट करके रखा। अब वहां से हाईजैक हो गए अनिरुद्ध द्वारका में, भगवान कृष्ण बलराम और आदि आदि सभी लोग ने बड़े चिंता में पड़े हैं, कैसे चले गए, कहाँ चले गए अनिरुद्ध कुमार प्रद्युम्न आदि सब समझो। तो नाराज जी से इन्फॉर्मेशन पता चला कि वो तो अरेस्टेड है वहाँ शोणितपुर में। उनसे सुन करके, मैसेज प्राप्त करके, अब कृष्ण बलराम आदि सारे जदुवंशी वाहिनी गए युद्ध करने के लिए। जब लड़ाई करने के लिए गए शोणितपुर बाणासुर के साथ युद्ध करने के लिए इस अनिरुद्ध प्रसंग में, तब बाणासुर भगवान शंकर के अति निरंडियर थे, उनके पालित पुत्र के जैसा थे। भगवान शंकर ने उनको वरदान दिए थे 1000 हाथ दिए थे, और बाणासुर मृदंग बजाएंगे, शंकर नाचेंगे, ये उनका डील था। तो इसलिए बहुत अच्छा संपर्क था अनासुर के साथ। तो जब लड़ाई हुआ तो उन्होंने प्रयार किए तो भगवान शंकर स्वयं पाशुपत अस्त्र सहित आए और लड़ाई की। बाणासुर तो पीछे खड़े रहे, सामने ही शंकर खड़े रहे। और भगवान शंकर के साथ और कृष्ण का लड़ाई युद्ध हुआ, सम्मुख युद्ध हुआ। हाँ, और युद्ध होने का जो परिणाम होना था तो वही हुआ। वो तो हारे, काम तो करेगा नहीं उनका कुछ। हारने के बाद में तो फिर बाणासुर के सामने आया। तो बाणासुर का 1000 भुजा जो मिला था, इतनी महाशक्ति मिला था शंकर जी कृपा से, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने कैसे चलेगा। एक एक करके हाथ काटने लगे, सारे केवल 4 हाथ बाकी था, बाकी सारा भुजा काट दिए थे। तब शंकर जी आ करके प्रणाम किए और बहुत स्तुति किए, बोले छोड़ दीजिए मेरा है प्लीज। स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न होकर के शंकर जी से, इसे तो बाणासुर को मारे नहीं, छोड़ दिए और बोले किसी पार्षद हो जा, शिव के पार्षदत्व दे दिए उनको, इतने बड़े गति दे दिए उनको। तो बोलते हैं कि अगर मेरे ऊपर उनका कृपा होता और मैं अगर उनका संबंध होता, हमारा इसे झगड़ा होता, लड़ाई करके बाद में माफी मांगना। बोले एक बार तो हो क्या, तभी दिमाग ठिकाने आ जाता, ऐसा नहीं दोबारा फिर ऐसे केस हुआ। कब? बोले भगवान कृष्ण ने ऐसे देवताओं के ऊपर चढ़ाव करके, नरकासुर था वो भी आसाम के थे, वो भी सोनितपुर भी आसाम भी है, तेजपुर आजकल है, और वो भी हुई नरकासुर जो भूमासुर था, प्रागज्योतिषीपुर के राजा था, उन्होंने भूमासुर ने उन्होंने झगड़ा करके देवताओं के साथ, देवताओं के माँ अदिति के कान के जो ईयर रिंग था वो छीन कर ली गई, वरुण जी के छतरी छीन कर ली गई, इंद्र के उनके कई और छीन के, कई ऐसे लेकर के कई देवताओं के राज्य के जो अनंत कान का कोष था उनको भी छीन कर ले गया सब। तो सारे देवताओं ने आकर के, कृष्ण द्वारका में थे, देवराज इंद्र आकर उनसे कंप्लेन के, बोले सर देखिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि जो नरकासुर है भूमासुर कृष्ण के बेटा है, भूमि के संबंध से बरहा रूप में उनके पुत्र था भूमि पुत्र, तो आ कंप्लेन किया सर देखिए ऐसे ऐसे किया, ऐसे बहुत बनवा सकता। तो केवल इतना नहीं किया था, उन्होंने कई राज्य के राजाओं को युद्ध करके परास्त कर सता करके राजाओं के लिए अरेस्ट किया था, राजकुमारी को ले गया था, 16,100 राजकुमारियों को अरेस्ट करके रखा था, बोला बाद में शादी करूंगा आप जो अरेस्ट रखा, और उनके पिता राजा को भी अरेस्ट कर दिया। अब सभी ने प्रार्थना कर रहे थे और इंद्र भी जाकर प्रार्थना की। तब भगवान कृष्ण ने नरकासुर को बद्ध करने के लिए निकले, अकेले गए, कोई आर्मी लेकर साथ में, साथ में सत्यभामा को ले गए, सत्यभामा को साथ में ले गए थे, और ले करके अकेले नरकासुर के साथ सामना किया। उनका विशाल दुर्ग था, उनके सेनापति, उनके पुत्र, उनके मंत्री सब को मार करके नरकासुर को बद्ध किए, बद्ध करके सारे राजाओं को, राजकुमारी को सुरक्षा किए। तो उनका जो वरुण के छत्र था और जो माता आदित्य की इयर रिंग था, ये सब ले करके अब इंद्र के पास गए, स्वर्ग में गए इंद्र को देने के लिए सब, क्योंकि इंद्र ने बहुत रिक्वेस्ट किया था माता आदित्य की। जब इंद्र ने खूब प्रशंसा किया, सर आपने बहुत मदद किए, सर आपने इतने परेशान किए, बहुत अच्छा किए, बहुत उनको स्वागत संवर्धना किया, और जो उनके समन जो ले गया था छीन करके उनको, भगवान ने उनको दिए वापस, इतने बहुत प्रसन्न हुआ, सारे देवताओं ने प्रसन्न हुए। तो हुआ क्या, कुछ दिन पहले, ये लड़ाई होने से कुछ दिन पहले द्वारका में एक दिन नारद जी गए थे, नारद जी तो सब जगह जाते हैं, इंद्र के यहाँ गए थे, इंद्र के यहाँ से एक पारिजात फूल ले गए थे, इंद्र में स्वर्ग राज्य में नंदन कानन फॉरेस्ट उसमें पारिजात मुख्य है, एक पारिजात फूल लेकर चले गए, लेकर के अब भगवान के पास बैठे थे, रुक्मिणी जी बैठी थी, रुक्मिणी के हाथ में दे दिए, और पारिजात पुष्प का जो महिमा बताया, रुक्मिणी की ये पारिजात फूल है कभी नहीं मुरझाएगा, मुरझान समझता ना, कभी सूखेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, और ये फूल कल्पतरु मुख्य का फूल है, जो चाहे वो दे देगा, और इतने उसके पास, जिसके पास पारिजात फूल रहेगा उनका कभी बीमार नहीं होगा, उनके कभी सुंदरता घटेगा नहीं। क्या बहुत सारे उनका महिमा है, पारिजात फूल महिमा वर्णन करके जब दिए रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। तब वो दासियाँ सब देखे और नारद जी भी जाकर के फिर दासियों को बताइए, नारद जी बता दिया सत्य माँ को बताइए, देखो आप भगवान के पास पारिजात पुष्प तो उनको मिला, आप क्या है कुछ नहीं। अब ये तो सभी कॉमन सेंस है ना, नहीं सपत्नी क्यों उनको दिए उनको नहीं दिए, वो तो सत्य माँ के टेम्पर उड़ गए, उन्होंने कोप भवन में जाने के लिए तैयार हो गई। जब कृष्ण आए सत्यभामा के पास बात ही नहीं की, और उनका आप सब जानते हैं जो सिम्टम्स की इस प्रकार डीलिंग की, बोले क्या बताओ बताओ तो सही क्या बात है, नहीं क्या आपने मुझे पूछते नहीं, ये नहीं करते ये नहीं। फिर अंततः बताए कि आपने उनको पारिजात फूल दे दिए, मुझे तो कुछ नहीं दिए पारिजात फूल, इतनी महिमा है मैंने सुना पारिजात। अरे वो इसी के लिए फूल के लिए इतने गुस्सा, आप फूल चाहिए फूल क्या, आपको फूल का फूल पेड़ ही दे दूंगा आपको, पारिजात वृक्ष ही दे दूंगा आपको। तो सत्य हूँ हस्बैंड ने जो प्रमिस कर रहे हैं इतने बड़े पारिजात भूखे दे देंगे उनको, तो केवल फूल दिए, बोले फूल क्या फूल के पेड़ ही दे दूंगा तुझे, कितने फूल होगा। तो फिर पासीफाइड हो गई, पासीफाइड हो गई, लेकिन कब देंगे क्या पता, पता नहीं था। आज टूर में जब जा रहे थे सुनीतपुर में नरकासुर वध के लिए, सत्यभामा साइड में साथ में चली गई, कभी कोई रानी जाते हैं सत्यभामा चली गई, और वहाँ से नरकासुर को वध करके उसे माल बरामद करके देवताओं का उनको वापस देने के लिए भगवान जो स्वर्ग राज्य में गए, स्वर्ग में उनका विशेष स्वागत संवर्धना हुआ, इंद्र ने खुद स्वागत किया, बहुत उनको ये क्या बड़ाई की सारा आपने इसे किए इसे की। तब दे करके जब वापस आ रहे थे स्वर्ग से, तब भगवान की याद नहीं था, सत्यभामा की याद था कि उनको प्रमिज किए थे पारिजात भूखे देने के लिए, अब तो स्वर्ग में आए अब तो लेना पारिजात भूख देखे। तब यहाँ बोले प्रभु आपने बोले थे पारिजात पेड़ देने के लिए, अभी अब स्वर्ग में आए ले जाओ ना, जाओ ले लो। तो स्वयं भगवान खड़े रहे गाड़ी में ब्रेक के, बोले जाओ ले आओ। नंदन कानन में जा करके सत्यभामा माता ने एक पारिजात पेड़ ले ली, जैसे तुलसी के पौधा होते हैं इसे बड़े से कुमार पौधा होता है, पारिजात पौधा उसे उठा कर ला कर गाड़ी में लोड कर दी, ले लेंगे अपने बगीचा में लगाए। जैसे ले लिए पता चला गार्डनर बोले कि सत्यभामा ने ले ली पारिजात के पौधा, वही इंद्र चंद्र वरुण जिनका चेयर भी छीन कर ले गया था लाकर के भगवान वो वापस दिए, उनके रिंग दिए सब कुछ दिए, इन सब ने जैसे खबर मिला बिल्कुल पलट गए, आकर झगड़ा करने लगे। इसमें भगवान शंकर भी थे, इंद्र रुद्र वरुण चंद्र सूर्य सब मिल करके भगवान के साथ युद्ध की लड़ाई की, बोले ना ये कैसे स्वर्ग का, ये अब मरते लोगों कैसे ले जाएंगे, ये तो आउट ऑफ द नियम के बाहर की बात है। अरे ये भगवान साक्षात है उनके सामने तो, लेकिन इतने वो लोग बेशरम है, अभी एक घंटा पहले इतने सार 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 कर रहे थे, लेकिन जैसे स्वार्थ की बात आया कि आपने समय ले जाते हैं तो आगे लड़ाई करने के लिए आ गए, सब मिलकर के लड़ाई किए, लेकिन जो होना था वही हुआ। सब मिलकर के लड़ाई करने के बावजूद सारे के नाक कटा, सब हारे, इसमें शंकर जी भी शामिल थे, शंकर जी बोलते मैं भी था लड़ाई में, इंद्र के साथ मैं भी खड़ा था लड़ाई में, सब मुख युद्ध में था, लेकिन मारपीट करके आए सब हार करके बुरी तरह से हारे, और हमारे सामने हमको हरा करके ओ, पारिजात मुखे लेकर चले गए, हम देखते रह गए कुछ नहीं कर पाए, वे तब भी लड़े, बोले अगर मेरे साथ उनका संबंध होता कृपा होता तो इसे लड़ाई होता समझो, तो कैसे बोल दिए कि मैं कृपा पात्र। नारद इसलिए कभी मन से निकाल दो, जिसका साथ जिसका संबंध होता है कृपा का संबंध होता है तो उनके साथ समझ युद्ध कभी नहीं कर सकता, एक बार बाई मिस्टेक हो क्या बार बार नहीं, नहीं। दूसरी बात आप कहते हैं कि मेरे पूजा आराधना उन्होंने किए, देखो नारद अगर मैं तो यही आशा करता हूँ कि उनके दास करूँ उनके सेवा करूँ उनके सेवा करूँ उनके दास बनूँ, लेकिन अगर प्रभु मुझे अपना मानते होते अपना दास करके मानते तो क्या कभी कोई मालिक अपने नौकर का पूजा करेगा, अगर कभी किया तो इसका मतलब क्या होता है, उपहास करना, बोले उपहास कर रहे हैं मुझे दिखा करके, मैं तो लज्जित हो रहा हूँ, बताओ। अरे वो तो वो है, मैं तो मैं हूँ, सब जानते, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते, लेकिन आकर सबके पब्लिक के सामने मुझे पूजा कर रहे हैं, तो ये तो मुझे उपहास कराते, मैं लज्जित हो रहा हूँ, इससे लज्जित हूँ। इस प्रकार के कोई ओम का पोजिशन मुझे आकर इस प्रकार पूजा करेंगे, और बोल और क्या करूं, इस प्रकार करके। और जो भगवान की भक्त है वो हमेशा निराभिमान होता है, उनको बिल्कुल को अभिमान अहंकार नहीं रहता। बोले नारद मुझे शर्म आता है बोलने के लिए, मैं क्या बताऊं, आपको तो पता होगा, मैं तो अहंकार के अधिष्ठात्र की देव हूं, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। जो अभिमान अहंकार है ना, वो डिपार्टमेंट के हेड हूं मैंने, बताओ, छोटी मोटे नहीं, समुच्चय अहंकार के डिपार्टमेंट हेड हूं, अहंकार के अधिष्ठात्री देव, प्रीडोमिनेटिंग डीटी। अब मेरे अहंकार के बाद क्या कहूं, सबसे पहले भगवत भक्त का पहचान होता है निराभिमान, अभिमान शून्य होता है, अहंकार शून्य, और मैं अहंकार के पूरे बटोर करके बैठा, उनके डिपार्टमेंट मेरे हाथ में। आप तो बताओ मेरे ऊपर कृपा, अगर मेरे ऊपर कृपा करते तो जब प्रलय महाप्रलय का समय आता है तब प्रभु मेरे ऊपर ड्यूटी दिए हैं कि सबको मार पीट करके साफ कर देना, बिल्कुल समाप्त प्रलय जो ध्वंस संहार कार्य वो मुझे देते हैं। बोली इतनी सारे लोग को मार पीट करके संहार करना मिटाना, ये जो महातामसिक तामसिक कार्य है ना, महातामसिक कार्य, सारे तामसिक स्टाफ ले करके वो मैं करना पड़ता है, मुझे इतने शर्म लगता है, क्या करूँ, महातमगुणी काम नहीं करता। तो बोलता है कि अगर मेरे ऊपर कृपा होता ऐसे काम मुझे देते करने के लिए, इसमें को भक्ति का नंदलेस है, एक काम सब कुमार पीट करना कि निशंस कार्य, ये भक्ति का काम है। मुझे जब एक काम दे रखे हैं तो इसे समझ नहीं रहे मेरे ऊपर कृपा है, कैसे मान लिया मेरे कृपा है। और नारद अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो मुक्ति देने का अधिकार तक दे दिए हैं, बोले इस बात को सुनकर के मुझे बड़े दुख होता है कहने के लिए, जो भगवान के भक्त हैं ये मुक्ति के नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं, मुक्ति के नाम सुनना नहीं चाहते हैं। और लेना तो दूर की बात है, मुक्ति दूं किसकी, तो वो भक्त मुक्ति लेंगे, तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। तो मुक्ति के पास में नहीं जाते कभी नहीं, इस प्रकार चाहते नहीं मुक्ति को, ये मुक्ति को लेकर मैं करूं क्या, मेरे ऊपर कृपा होता तो ये काम दे दीजिए, भक्त चाहते ही नहीं, मुक्ति का नाम सुनना नहीं चाहते, भटकना दे पास में, तो मुक्ति के लेकर क्या करूं। और दूसरी बात कहते हैं तो मेरे कृपा पात्र पता है नारद जी आपको, अगर मेरे से कृपा पात्र होते तो मुझे भक्ति कार्य लगते, भगवान के जो भक्त हैं तो हमेशा उनको भक्ति प्रचार में लगाते हैं, ये बात है ना, टीचिंग एक्टिविटी से लगाते हैं। बोले मुझे किस काम में लगाए, मुझे बुला करके बोले, बोले हे शंकर आप जाओ, जा करके जगत में लोग को विमुख करो, इस प्रकार विमुख वैदिक विमुख भाष्य लिख, वेद को शारीरिक भाष्य लिख करके इस प्रकार लोगों को मेरे से विमुख कराओ। पुष्टि बड़े बताओ, बिल्कुल उल्टा, साक्षात भगवान सगुण साकार, कितने सुंदर स्वरूप है उनका, उनके कितने दिव्य गुण है, और मुझे इस प्रकार अड़क दिए, मुझे शंकराचार्य बनकर के, मैं शंकर आचार्य बनकर गया और जाकर उल्टी पुल्टी भाष्य लिखा वेद के ऊपर, शारीरिक भाष्य लिखा और भगवान को प्रमाणित करके दिखाए, कह रही है निराकार है, निर्गुण, कोई गुण नहीं, आकर बकर कुछ नहीं, जीरो शून्य है, बताओ मेरे प्रभु ऐसे, मैं सब कुछ जानता हूँ समझता हूँ, मुझे ऐसे ड्यूटी में डाले, भक्ति के प्रचार विरोधी प्रचार है, भक्ति के सपोर्ट प्रचार थोड़ी है। भक्त लोग बोलते हैं कि मायावादी संग है सर्वनाश, और वही काम मुझे दिए थे, भक्ति के सरासर विरोधी कार्य करने के लिए मुझे डिपार्टमेंट दिखे, मुझे करना पड़ा, कैसे में भक्ति का, जो भक्त होता है तो भक्ति के प्रचार करता है, भक्ति के विरोधी प्रचार करने के लिए भक्त करेगा? भगवान ऐसे काम देंगे? तो इसलिए मेरे पास भक्ति के लेस मात्र नहीं है, कृपा के लेस मात्र भी नहीं है, तो कैसे कह सकता है? जो बारम्बार इस प्रकार होता है लड़ाई, इस प्रकार से मैं कैसे कर सकता? अभी तक भी नहीं उससे बच नहीं पा। और बाकी जो कहता है उनकी इस प्रकार, तो नारद जी ने बोले बात तो सही है आप कहते हैं, लेकिन जो आपके में गुण देखा हूँ, क्या गुण? ना जो आपने आपके जो सही उपासक है, भक्त हैं जो आपके उपासना करते हैं, आप उनको सही आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन जो आपके निंदा भी करते हैं, लेकिन अगर विष्णु के भक्त हैं लेकिन आपके निंदा करते हैं, लेकिन आप उनको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर। इस बात को प्रमाण देने के लिए उन्होंने जयद्रथ और चित्रकेतु का बात बोले। बोले जयद्रथ, अब जयद्रथ का नाम सुने होंगे आपने, जयद्रथ अपने पिता, दोनों बाप बेटे शंकर जी के कट्टर भक्त थे। ओ रुद्रक्षत्र और उनका पुत्र जयद्रथ दोनों शंकर जी की उपासना करके, एक बेटा था रुद्रक्षत्र का जयद्रथ, तो इसी उपासना किए थे। तो जयद्रथ तो भगवान को प्रसन्न करके वर मांगा था कि मैंने कम से कम पांडवों को हरा दूं। शंकर जी बोले पांडव को तो हराना नहीं, तो ठीक है जब बोल दिया तो इतना कर सको। एक दिन फिर अर्जुन के बिना, अर्जुन के अलावा एक दिन पांडव को तो हरा सकता है, जस्ट फॉर वन डे, यही वरदान दिए थे उसको। और उनके पिताजी खूब उनके पुत्र के लिए वरदान मांगे थे, मेरे पुत्र ऐसे हो, इतना अमर हो, कोई मान नहीं कि बेटा मरा है, खूब तो उनके बोले कि ठीक है, तुम बोलते तो तुम्हारे पुत्र को अमर होगा, कैसे अमर है ना, आपके पुत्र को कोई उनके सर काट दे तो उनका सर तुरंत कट जाएगा, वो तुरंत मर जाएंगे, आपके पुत्र को मारते ही जो मारेगा मर जाएगा। लेकिन लेकिन क्या है ना, कोई अगर आपके पुत्र के सर के काट करके नीचे नहीं गिराएगा, आपके हाथ में गिराएगा, आपके हाथ में छोड़ देगा, तो फिर वो मरेगा, आप भी मरेंगे। वो कभी सोचा नहीं था ऐसा कोई होगा। बोला मैं तो यहाँ बैठूंगा आपके पास में, चरण में तपस्या करके भजन कर बैठूंगा, मेरा बेटा कहाँ रहेगा, कौन नहीं हो ही नहीं सब गुट गुट चलेगा। तो शंकर ने इस प्रकार वरदान दिए बाप को बेटे को दोनों को, लेकिन यही हुआ। भगवान ने उनको अर्जुन को बोले जयद्रथ बद में, बोले उनको मारो लेकिन होशियार, यही से मारो फुटबॉल की तरह ऊपर ऊपर उठाते उठाते लेकिन वहां देकर गिराओ, जैसे तो बैठा है उनके हाथ में गिरे, कुछ भी कर सकते ऐसे किए। और उन्होंने पांडव के साथ युद्ध किया, अर्जुन नहीं थे, केवल एक दिन उनको रोक पाया, लेकिन अंततः बद्ध हुआ उनका, मर गया। तो जो आपके जीवन पर्यंत आपको उपासना किए थे उनको ऐसे वरदान दिए, ठग दिए उनको, बेचारे मरे बाप बैठे दोनों। लेकिन चित्रकेतु महाराज जो नारद जी की कृपा से संकर्षण के उपासक भक्त बने, और संकर्षण देव का उपासक, संकर्षण देव का भगवान का उपासना, अनंत देव का उपासना करते, वो एक दिन सुमेरु की घाटी में जा रहे थे, विद्याधर की तरफ जा रहे थे, और आपने आपने मिसेस के साथ और सारे अपने स्टाफ के साथ बैठे थे, क्लास चल रहा था, लेकिन उसको देख कर चित्रकेतु ने आपको क्रिटिसाइज कर दी, बोले ये नहीं देखो ये क्या है, एक भद्रल के सभा में बैठ करके इस प्रकार बैठे, इस प्रकार आपको निंदा की, लेकिन आप कुछ नहीं किए, आपके निंदा को पब्लिकली क्लास में निंदा की आपके सामने, आपने पत्नी के सामने, सारे सुधीजन के सामने आपको निंदा की, आपने प्रश्न कुछ नहीं बोले चित्रकेतु को, लेकिन आपके पत्नी ने उसको सहन नहीं की, उनको अभिशाप दे दी, तो आपने डांटे पार्वती को, बोले मूर्ख क्या किया आपने, और सही हुआ चित्रकेतु को पार्वती ने साफ दे दी, नो क्या बोला ओके नो प्रॉब्लम, पार्वती बोला ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शंकर जी डांटे पार्वती को, बोले देखा यही है विष्णु भक्त के महिमा, जो किसी ने नहीं बोला मैं भी नहीं बोलता हूँ, तू क्यों बड़बड़ उठकर झगड़ा करने लगा, ये विष्णु भक्त है उनको साफ क्या करेगा, अपी तुल्यार्थ नरक, बोले स्वर्ग नरक वैकुंठ उनके लिए सवाल, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, अभिशाप देने से क्या, उनको वरदान देने से क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ही जितने कमाई था सब बेकार गया, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार अर्जुन मतलब कितने सपोर्ट किए चित्रकेतु को, जो आपको निंदा किया पब्लिकली, लेकिन जो आपके जीवन पर्यंत उपासना किया तो उसको मरवा दिया, मरवा दिया। बोले जितने हिस्ट्री में अभी तक प्रमाण है, जितने खूब आपको पूरे तन मन धन लगा करके आपको सेवा किया, किसी को नहीं बचा, सबको मरवा दिया आपने। रावण है, कंस है, नक है, सब एक एक असुर आपके पास आते हैं और सबको मरवाते हैं, वंशनाश करवा देते हैं। और जो आपको नहीं करते हैं विष्णु भक्त, उनके लिए प्रचेता गण आए, आपको पूछे भी नहीं थे, उल्टी जाकर बिना पूछे उनको मदद किए, ये आपके स्वभाव है। बोले नारद जी ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं बताया ना आपको, मैं पूरी तरह से प्रयास करता हूँ कि प्रभु के दासाम दास बनूं, मैं तो यही मानता हूँ, लेकिन यही आशा करता हूँ कि मुझे प्रभु दास करके मान ले, लेकिन मानते ही मुझे दास करके कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं। मैं मेरी तरह से तो पूरी प्रयास किया हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन करूँ क्या, कभी नहीं छोड़ते। और जहाँ तक आप कहते हैं कि मुझे डांटते नहीं, जब मेरा कोई गड़बड़ हो जाता है, मैं कुछ ऐसे वरदान देता हूँ, बार बार मिस्टेक करता हूँ, ब्रह्मा को डांटते मुझे डांटते नहीं। बोले नारद क्या बताऊँ, सच बताता हूँ आपको, डांटना जो होता है ना, जिनका साथ जिनका संबंध है, जिनको सुधारना चाहता है, वही डांटेगा उसको, जो डांटता नहीं मतलब उपेक्षा कर दिया, जाने दे मरो, कौन डांटता है। बोले आप कभी जाएंगे वृंदावन, गए थे प्रसाद लेकर के आए, तो आपके बेटा भी है और कई लोग बेटे मिलकर खेल रहे हैं, तो बोले आओ सब प्रसाद लो, प्रसाद सबको देंगे। लेकिन एक दिन आप आ रहे हैं और आपके बेटे और भी लड़के हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो जिसको देखकर गुस्सा हुआ आपका, तो आपको सबको पकड़ कर पीट सकते हैं, डांट सकते हैं, नहीं कर सकते, केवल आपके पुत्र को डांट सकते हैं, पीट सकते हैं। प्रसाद देने के लिए सबको दे सकते हैं, डांट पीट के लिए केवल आपके बेटे को, आपके भाई, आपके पुत्र को, जिसके ऊपर अपनापन है, उसी को सुधारने का आपका अधिकार है, बाकी किसी को छू नहीं सकते, वो आपका नाम केस कर रहे, हुआ रही कर नहीं सकते। तो इसलिए जिसको जो अपना समझता है, अपना मानता है, उसी को तो डांटेगा, और नहीं तो डांटेगा नहीं, मधुर मधुर मीठा बात कह कर के उसको क्या कर देगा, उसको मानते हैं। तो इसीलिए प्रभु मुझे मृगासुर के केस में, त्रिपासुर के केस में, जितने में गड़बड़ी किया, जितने मिस्टेक कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कभी डांटते नहीं, मुझे ऐसे मीठा मीठा वाणी करके मुझे वंचना कर, मुझे उपेक्षा कर दिए। बोले ब्रह्मा को तो कम से कम डांटे, सुधारे, अपना बेटा मान करके उनको ठीक ठाक, मुझे तो मानते ही नहीं अपना, मैं मिस्टेक करने पर ही मुझे सुधारते भी नहीं, और अपना मानते दास होता तो मैं सुधारते नहीं, मुझे मानते बोले भैया ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, कोई मुझे मदद नहीं करते, मुझे मानते नहीं अपने दास करके, अब कैसे बोलते हैं भक्त तो है ही नहीं, कृपा पात्र के कैसे मानूं, अगर कृपा हो करते मेरे ऊपर तो कम से कम मुझे थोड़ा मेरा मदद करते, मुझे भलाई करते, मुझे डांटते, मुझे सुधारते, नहीं करते। तो हर प्रकार संकल्प से प्रमाणित करके दिखा दिए कि उन्होंने भगवान के कृपा लेस भी नहीं उनके पास में, रोग में ड्यूटी में ड्यूटी लगा हूँ, लेकिन अभी तक बना नहीं, मुझे कृपा पत्र बन नहीं पाया। तो नारद जी सुन करके बोले अरे आप में क्या कोई कृपा पत्र मिलेगा नहीं। बोले नारद चिंता मत करो, आपको भगवान के कृपा पत्र ढूंढ रहे हैं ना, चाहते हैं ना, तो मैं बताता हूँ, सुनो, यहाँ टाइम खराब मत करो, वैकुंठ में जा कर देख, वैकुंठ जगत में जितने वैकुंठवासी है, वैकुंठ का नाम ही है विगत कुंठा, जहाँ कोई कुंठा ही नहीं है, इस वैकुंठ धाम में किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, दरिद्र कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के केवल सुख ही सुख है। वो किस प्रकार के सुख, भोग सुख नहीं है, भगवान की सेवा सुख, उनके साहचर्य सुख, भगवान को साथ में देखते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, उनके साथ में सेवा करते हैं, उनके दर्शन, उनके सानिध्य, उनके सेवा के सुख में इतने सुखी होते हैं, वैकुंठ के अमाप ऐश्वर्य है, लेकिन ऐश्वर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, इतने भगवान के सानिध्य, उनके सेवा के, उनके दर्शन के इतने आनंद प्राप्त करते हैं, बाकी वैकुंठ का हमाप ऐश्वर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे महासौभाग्यवान है हमेशा चिन्मय वपु धारण करके वैकुंठ स्थिति में रह करके हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो और यहाँ तो भक्तों के बात क्या कहूँ, जो भी भक्त वैकुंठ में जाते हैं सेवा करने के लिए जाते हैं, यहाँ तो पेड़ बन करके लता पता पौधा कीट पतंग पशु पक्षी गाय बकरी बनकर के हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हैं, और सारे वैकुंठ के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पेड़ लते पर्यंत भगवान के कृपा से सिक्त अनुग्रहित हैं, उनसे कृपा से बिल्कुल अनुग्रहित हैं, सभी उनके सेवा में लगे हैं, किसी का मन में दूसरा कोई अभिलाषा है ही नहीं, केवल भगवत सेवा का आशा, उससे और कुछ है ही नहीं। तो नारद, तो यहाँ जो भगवान की कृपा के पात्र ढूंढना चाहते हैं वहाँ जाओ, ए टू जेड कोई बाकी नहीं उनके अलावा, सारे भगवत कृपा से अनुसिक्त है, सर्वर है, सभी भगवत की कृपा में अनुग्रहित है, यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, और वैकुंठ जगत का ऐसे महिमा गान करने लगे, ऐसे बताने लगे, तो नारद जी तो बिल्कुल प्यार हो गए। नारद जी ऐसे परीक्षित बोलते हैं, माँ नारद जी शंकर जी का मुख से वैकुंठ का ऐसे उत्कर्ष को सुन करके, ऐसे महिमा सुन करके अब सीधा वैकुंठ जाने के लिए उतावली होने लगे। तो पार्वती बोले, नारद जी वैकुंठ में भी सभी नहीं है, मैं बताता हूँ, वैकुंठ के अधीश्वरी साक्षात वैकुंठेश्वरी जो लक्ष्मी जी है उनका तो क्या बताओ, भगवान के साक्षात कृपा के पात्री वही है, बाकी तो सब ऐसे ऐसे है लेकिन साक्षात कृपा पात्री वही है। उन्होंने नित्य प्रति भगवान की अंग संश्रया, उनके अंग सेवा के उनके अधिकारिणी है, अधिकारिणी है, और भगवान हमको बख्य विलासिनी आपने बख्य में स्थान दिए हैं, लेकिन बख्य से उतर करके शरण पकड़ कर बैठिए, क्या सेवा की एटीट्यूड है, क्या भावना, शरण छोड़ती नहीं, जब भी भगवान उनको बख्य में स्थान दिए बोलते ना यहाँ मजा नहीं है, मैं चरण सेवा करूंगी। इसलिए स्वामी के पद सम्मान करने के लिए सौभाग्य की देवी लक्ष्मी उतर करके हमेशा चरण सेवा में बैठती है। अरे जिनके कटाक्ष कृपा के कटाक्ष पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते रहते हैं, सारे अष्ट सिद्धि विभूति सब रिद्धि सब कुछ लक्ष्मी जी के एक कटाक्ष दृष्टि मात्र से मिल जाए, आज वो स्वयं भगवती लक्ष्मी हमेशा भगवान चरण को पलटते रहते हैं, हमेशा भगवान के अंग संग में रहते हैं और उन्हीं के सेवा करती है, उनके उचिष्ट भाजन है, उन्हीं के उनके कृपा को तो क्या कहूँ, ये तो साक्षात वैकुंठ के परमेश्वरी है, भगवान के साक्षात कृपा पात्री है। और लक्ष्मी जी का ऐसे वंदना करने लगे क्योंकि वो सहेली हैं, दोनों फ्रेंड है ना, पार्वती और लक्ष्मी, तो इसके लिए उनका गुणगान करने लगी। तो उनको सुन करके भगवान शंकर बैठे थे पार्वती, नारद जी परखित बोले, माँ अब नारद जी वैकुंठ के जाना चाहते, बोले वैकुंठ प्रिय श्री वैकुंठेश्वरी श्री लक्ष्मी हे रमापति हे वैकुंठपति, ऐसे कह करके सीधा लक्ष्मी के पास जाने के लिए निकल पड़े। जब उतावले होकर लक्ष्मी पास जाना चाह रहे थे तो शिव जी ने उनको पकड़े, हाथ पकड़ बोले, हे नारद इधर आओ, बोले एक बात मैं कहना चाहूँगा लेकिन मैं मिसेस बैठी है इधर, इसलिए इधर हम चुप से आपका कान में कहना चाहूँगा। उनको बुला करके उनके कान में चुप चुप, तो उनकी पत्नी सुन नहीं पाएगी, उनको बोलने लगे, बोले नारद जी तुम मेरे अपने हो, मैं जानता हूँ तुम कितने उच्च कोटि के भक्त हो, मेरे पास आए हो, मैं आपको इसे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं सच बताता हूँ, वो पार्वती जी बैठे ना इसके सामने वो सुन लेगी, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ उनके सामने, मैं चुप से कहता हूँ, सुनो क्या ना है नारद, क्या बताऊँ, मेरे से आपके पिता ब्रह्मा से साक्षात भगवत बाहक गरुड़ आदि से और तो और साक्षात उनके अंग संशया उनके धर्मपत्नी लक्ष्मी से और तो और भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपने श्री विग्रह से भी इतने नाता इतने प्रसन्न नहीं हूँ जितने मेरे भक्त के प्रति होता हूँ। ये शास्त्र वाणी क्या आप भूल गए, नहीं सुने? कितने बार भगवान ने अपने श्रीमुख से घोषणा किया है कि मेरे ये सब प्रिय नहीं है जितने मेरा भक्त प्रिय है। और भगवान सीधा घोषणा कर बोलते हैं कि मेरे समस्त भक्त में प्रहलाद शिरोमणि है, वो आइडियल डिवोटी है, मेरे भक्त प्रहलाद भक्त में उपमान है। ऐसे भगवान साक्षात अपने मुख खोलने बोले हैं। तो इसलिए प्रहलाद की कृपा पात्रता, प्रहलाद की भक्ति के सामने मैं, ब्रह्मा, लक्ष्मी और कोई गरुड़ आदि भगवत पार्षद कोई उनके सामने समान नहीं है। सबसे ऊपर प्रहलाद है। भगवान साक्षात कहते हैं, बोले कहते नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, बिल्कुल हूबहू घटना हुआ था ना। कब ना, ये घटना हुआ था जब हिरण्यकशिपु भगवान ने बद्ध किए, जो हिरण्यकशिपु भगवान बद्ध किए, बोले मैं भी था, प्रैक्टिकली प्रेजेंट था, बोले आपके पिताजी भी थे और सारे देवता थे, इंद्र आदि सारे। अब इंद्र ने ना, हिरण्यकशिपु ने सारे देवताओं का, ऋषियों का, ब्राह्मण का ये हाल करके रखा था, इन्हें रो रो कर बेहाल हो चुके थे। अब जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को बद्ध किए, अशेष नेगेटिव था, मैंने मार नहीं सकता, अमरत्व लगभग था, ऐसे नहीं मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, अस्त्र में नहीं, शस्त्र में नहीं, पशु में नहीं, ब्रह्मा के क्रिएशन के अंदर कोई जानवर किसी में नहीं मरेगा, सृष्टि के कोई जीव से नहीं मर सकता। सारे कंडीशन को सत्य मेंटेन करते हुए भगवान ने जो अद्भुत रूप प्रकट करके उनको जो बद्ध कर दिए, तो सारे देवता ऋषि इतने खुश हो गए, भगवान को थैंक यू देने के लिए गए, ओ प्रभु आपने मार दिए। लेकिन जा करके पास में नहीं जाते थे, क्योंकि भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार करके उनके आंतड़ी को निकाल करके, कोई माला पहनने वाला नहीं था, जाके हिरण्यकशिपु के सीट पर बैठ गए भगवान, बैठ करके हिरण्यकशिपु को डेड बॉडी को गोद में ले लिए। अरे कोई आकर कोई थोड़ी पूजा करे, कोई माला पहना है भगवान ने असुर बद्ध के, कोई है ही नहीं ना। तो भगवान ने तुरंत उनके आंत को निकाल करके पहन लिए माला, आपने खुद पहन ली। और कितने भयानक देखा जाएंगे, एक तो सिंह जब क्रोधित होता है, क्योंकि भगवान का जो अपर हाफ था वो सिंह था, लोअर हाफ मैन था, सिंह जब गर्जना करता है, क्रोधित होता है, कितने भयानक दिखता है। और उसके ऊपर अभी अभी मर्डर किया, इतने खून से सनी हुई उनके आयाल, उनके बाल सब ऐसे गर्जना करता है, उसके ऊपर ताजा आंत निकाल करके गले में डाल दे, कितने भयावना दिखता है पड़ता था। और ऐसे गर्जना करते थे चारों ओर, बोले आकाश पाताल कंपमान होता था, बोले हम लोग तो थर थर कांपते थे, कौन जाए, आरती प्लेट लेकर गए थे, बोले धूप दीप अर्घ्य पाद्य माला सब लेकर साथ में गए थे, आरती करेंगे प्रभु जी को, आप बहुत ध्यान क्यों, अच्छा किया आपकी आरती उतारने गए थे। लेकिन आरती करने का विधि है, पहले फूल माला पहने, बाद में शंख बजाएं। बोले ब्रह्मा जी, बोले शंख तो मैं बजा दूंगा, शंख तो मैं बजा दूंगा, मैं आरती में कर लूंगा, दूर खड़ा हो क्या, यहाँ से आरती कर लूंगा गेट के बाहर से, लेकिन माला कौन पहनाएगा? ऐसे तो नहीं कि माला पहनाने के फूल है कि फेंक दो चरण में पड़े जो है पड़े पुष्पांजलि, माला तो भाई पहनाना पड़ेगा गले में, फेंक दो गले में ना लगे, कहीं लगे कैसे लगे, तो इसी से कर रहे हैं। माला कौन पहनाए, सारे देवताओं में हार कर कोई ना जाना चाहे, बोले हेड में सामने में ब्रह्मा जी थे, मैं था, हम दोनों तो पहले नाराज हुए, हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे भाई, आरती हो या ना हो हम नहीं जानते, माला तो हम नहीं जाएंगे। बाप रे बाप, इतने खतरनाक, फ्यूरियस फ्यूरियस, इसने कौन जाएगा माला पहनाने के लिए, सारे देवता बोले सारा आरती होगा नहीं ना, हम कैसे करें, माला कोई पहनाए, कोई राज नहीं, हम ही नहीं जाते तो कोई जाए। बोले कोई बात नहीं, माता जी के पास चलते हैं, माता जी आएंगे, उनके हस्बैंड है वो संभाल लेंगे, हाँ हाँ चलो। बोले हम दोनों मिलकर भी, बोले मैं और ब्रह्मा जी दोनों गए और श्रीमती जी के पास, लक्ष्मी के पास जाकर बता ऐसे ऐसे, माता जी थोड़ा मदद कीजिए आप, ना कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी आपने पणत साड़ी को कमर में बांधते ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कमर कस करके वो निकले, हाँ चलो चलो मेरे साथ, कोई बात कहाँ माला, मैं लाल लेकर आओ, मैं चलती हूँ अभी, क्या हो जाए उनको, क्या बना उनको, बना नहीं माला, क्या बात है। अब सब ने उनके पीछे चले चले, ब्रह्मा जी खुश हो गए, चलो माता जी आ रहे हैं, उनके हस्बैंड को बना देंगे माला। माला ले करके लक्ष्मी जी चले, जाकर जब स्पॉट आ गए, आ करके सामने दो कदम जाकर जब देखे, देख करके वहीं खड़ी हो गई, मुझे नहीं लगता है कि वो ये है। मैं तो उनका कई एल्बम में फोटो भी ऐसा नहीं देखा क्योंकि ऐसा मेरे को तो भाव नहीं थे, ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे को ऐसा हाफ मैन हाफ लायन ऐसा कभी ना दृष्ट ना श्रुत्वा ना कोई सुने था ना कोई देखे थे। लक्ष्मी जी बोले बाप रे बाप, ऐसे गर्जना कर रहे, ऐसे पंजा उठा कर ऐसे गर्जना कर रहे, लग जा जाए तो मेरे छिल जाएगा, मैं वहाँ माला रखा मर जाती। मैंने कहा लक्ष्मी जी भी बैकआउट हो गई, ब्रह्मा से भी तो ऐसे नहीं थे, अंततः क्या करेंगे, बड़े संकट में पड़ करके देखे प्रहलाद जी खड़े थे पास में। तो ब्रह्मा जी अंततः प्रहलाद जी को बोले, बोले बेटा प्रहलाद देखो तेरे कारण हमारे प्रभु हमारे साथ इतने गुस्से हैं, हमारा बस इतने गुस्से में है, ओनली फॉर यू। हाँ तुम्हारा पिता के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुझे बचाने के लिए तुम मारने के लिए तो पिता को मर्डर किए, इसे के जो कि इसी वजह से हैं, तो प्लीज आप देखो हम तो सांत्वना करने के लिए आए हैं, पूजा करने के लिए, लेकिन वो आप माला पहनाओ हम आरती करेंगे। जैसे बात कहे छोटा सा बालक प्रहलाद, 5 साल के बालक था, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भगवती लक्ष्मी नहीं आ पाए, आप नहीं आ रहे, ब्रह्मा जी शंकर जी नहीं आ रहे, इंद्र आदि इंद्र वरुण चंद्र देवता नहीं आ रहे, मैं असुर कुल संभव एक छोटा सा बालक मैं जाऊं, ये अभी मैं भी फर्स्ट टाइम देखा, इतने विशाल इतने अत्याधिक भयानक रूप मेरे सामने, मेरे पापा का अभी भी मर्डर किए इन फ्रंट ऑफ मी, मर्डर नहीं किए पूरे रक्त लगा हुए आंतड़े आंत को गले में डाल करके बैठे हैं, मेरे पिताजी के डेड बॉडी उनके गोद में पड़ा हुआ है, मैं जाऊं उसके गला माला पहनाने के लिए, जस्ट सोचिए क्या सिचुएशन। मम्मा जी बोलते तेरे कारण है तुझे पहनाना पड़ेगा, हम नहीं जानते। तो प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले, चुप से ब्रह्मा जी के हाथ से माला लिए और गए। अर्भकम शिशु, शिशु रूप में बालक प्रहलाद जाकर निडर होकर के नरसिंह भगवान के चरण में जाकर पहुंचे और माला पहनाने के लिए इसे उठाते थे, छोटे से बालक थे। नरसिंह भगवान वो बहुत ऊंचा आसन पर बैठे हैं और इतने विशाल रूप था कि आकाश को छूता था उनके सर गर्जना करते, लेकिन प्रहलाद जी ने मन में इच्छा था कि मैं प्रभु को माला पहनाऊं। ब्रह्मा जी बोलते माला पहनाने के लिए पंजे उठा कर ऐसे ऐसे करते हैं। अब बालक है, जब नहीं होंगे तो रोएंगे और क्या कर सकते, बालक चाहेगा तो कामना बनेगा तो बालक कर सकता है। ऐसे ऐसे करते थे, भगवान के नज़र में नहीं था, भगवान तो गर्जना करते थे, इधर उधर मुंह देखते देखते थे, बाई चांस नज़र थोड़ा नीचे पड़ा, नीचे पड़ा तो देखे छोटा सा बालक रोते रोते पंजा उठा करके ऐसे हाथ उठाते माला लेकर के। जैसे नज़र पड़ा नरसिंह भगवान का तो तुरंत उन्होंने उनका गुस्सा शांत हो गया, हाथ बढ़ा करके उठा लिए उसको। वाह वाह छोटा सा लड़का, ये ब्रह्मा आदि सब बाद में खड़े होकर यहीं से कर रही है, ये आकर मेरे चरण में खड़ा होकर मुझे पहनाना चाहता है माला, आपने हाथ से उठा लिए। नरसिंह भगवान ने शिशु प्रहलाद को उठा लिए, उठा करके कंधे पर बैठा गोद में लिए, नहीं बोले कंधे में बैठो माला पहनाओ, लेकिन फिर भी छोटे छोटे हाथ में प्रहलाद नहीं पहना सकते थे, इतने विशाल रूप तमस्तक था। तो भगवान नरसिंह देव ने मुंह मस्तक नीचे करके जबरदस्ती उनके हाथ से पहन लिए माला, ऐसे करके ऐसे पहन लिया, स्वयं पहन लिए प्रहलाद के हाथ से माला पहन लिए। जब पहन लिए आप प्रहलाद के भगवान के कर कमल के स्पर्श पा करके इतने प्रसन्न हो गए, प्रहलाद तो ऐसे ही नाम भजन करके मुक्त हो चुके थे, सारे कर्मश नाश हो चुका था, अभी साक्षात भगवत कर कमल स्पर्श प्राप्त किए, भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखे, उनको अपने गोद में बैठाए तो बिल्कुल कर्मश नाश हो गए, प्योर से प्योर हो गए। अब भगवत स्पर्श पा करके इतने प्रसन्नचित हो गए तो भगवान ने उनके मुंह की ओर देख रहे थे, नरसिंह भगवान प्रहलाद की ओर देख रहे थे, प्रहलाद माला पहन करके जैसे छोटे बच्चा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया जो खुशी होता है, तो मुंह से उनका छोटे बच्चे के मुंह से पूरा फूल खुल करके फुल प्लीज हंस मुख हंस आता है तो कितने अच्छा लगता है। तो नरसिंह भगवान वही देख रहे हैं प्रहलाद जी के मुख से, बहुत प्रसन्न चित्त है, तो उसको देख करके उनके मन में इतने स्नेह उमड़ आया, आ कितने खुश है, कितने अच्छा बेटा है, तो कैसे करेंगे, उनको थोड़ा उनको प्रेम करना चाहते थे, स्नेह करना चाहते थे, लेकिन स्नेह कैसे करेंगे, अब माँ पिता होते छोटे बच्चे को किस करेंगे, चुम्बन आदि करेंगे, लेकिन ये तो सिंह है, सिंह तो चुम्बन कर नहीं सकता, सिंह किस नहीं कर सकता, और ये मनुष्य के बेटा है और ये सिंह है, पशु है, दोनों के म्यास नहीं बैठता है। वो चाहता है पिता से स्नेह पाने के लिए, वो स्नेह करना चाहता है, लेकिन फर्म अलग अलग है, सिंह के रूप में हो ही नहीं सकता, तो क्या करे। नरसिंह भगवान इतने उत्साहित हो गए प्रहलाद को प्रेम करने के लिए, सिंह जैसे आपने सावक को अपने बच्चे को पाने से वो चुम्बन नहीं कर सकता, क्या करेगा, चाटेगा, ले ली हम, वो चाटने लगे, प्रहलाद को उठा करके गोद से भगवान नरसिंह देव चाटने लगे, आपाद मस्तक चाटने लगे। अभी तो भगवान के कर कमल के स्पर्श पाए थे, अभी तो साक्षात भगवान के मुख कमल के, उनके जिह्वा के स्पर्श पाए, बताओ इतने धन्याति धन्य हो गए प्रहलाद, इतने खुश हो गए। उनके खुशी को देख करके नरसिंह भगवान यहीं पे कहते हैं, यहीं पे लिखा गया कि भगवान के लोभ जागृत हुआ, नरसिंह भगवान ने लोभ किए, बोले मेरे भगवत्ता को भाड़ में जाने दो, कुछ नहीं, ये इतने खुश हो रहा है, मैं तो इतने खुश कभी हुआ ही नहीं अभी तक, मेरे सेवा से, मेरे प्रसन्नता से वो इतने प्रसन्न हो रहा है, मैं तो इतने नहीं हो पा रहा, मेरे से कई गुना ज्यादा वो है। तब उन्हें डिसाइड किए, हाय हाय मैं हार कर रहा, तभी से नरसिंह भगवान ने ये प्रमिस किए, अभी फर्दर कभी मैंने आऊंगा तभी से गलती नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक नरसिंह भगवान सबसे पहले भगवान का कौन सा अवतार हुआ था, अरे मीन अवतार, सबसे पहले मत्स्य अवतार हो याद नहीं, आदि अवतार कौन है, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार के माता पिता कौन है, कोई है नहीं, भगवान भगवान के कौन माँ बाप होंगे, कोई नहीं था। सेकंड अवतार कौन हुआ है, कच्छप, कछुआ अवतार के कौन पेरेंट्स है, कोई है, है नहीं। तृतीय अवतार कौन है, बरहा अवतार का कोई है माँ बाप, है नहीं। चौथा अवतार कौन है, नरसिंह भगवान, उनके माँ बाप कौन है, कोई नहीं। तो अभी नरसिंह भगवान ने डिसाइड किए, अब तक जो हो गया रिकॉर्ड खराब हो गया, अब तक तो मैं मिस्टेक में था, अरे मुझे पता नहीं था ये छोटा बच्चा होने से इतने आनंद प्राप्त होता है, मैं तो बालक बना ही नहीं अभी तक, माँ बाप बनाए नहीं कभी, अब भी गलती नहीं करूंगा। तो नरसिंह अवतार के बाद में जितने अवतार हुआ, नेवर एवर ऐसे होगा कि भगवान अपने माँ बाप नहीं बनाए, हमेशा माता पिता लेकर के आए। उसके बाद में जितने अवतार हुआ, देखिए सभी का माँ बाप हुए, उसके पहले किसी ने, इससे प्रहलाद को देख कर किसी को इतने भगवान गंगोबा इतने प्रसन्न है, ये प्रसन्न तो मुझे नहीं मिला। तो इस प्रकार बोलते हैं कि ये बात साक्षात बात मैं कहता हूँ प्रकट, हम सभी पीछे हट गए, मैं शिव जी बोलते हैं, मैं खुद था ब्रह्मा जी और जितने भगवत अवतार पार्षद लक्ष्मी तक कोई लायक नहीं मिले, अकेले प्रहलाद, अकेले प्रहलाद भगवान के ऐसे कृपा भाजन हुआ, जिनको उठा करके गोद में, गोद से कंधे में, कंधे से तो उनको माला पहने, सूंघे, चाट गए, सूंघे, क्या क्या नहीं कर गए उनको, इतने कृपा से सिक्त कर दिए उनको। और तो और हमारे सामने की घटना है, उनको बैठा करके जब करोनेशन सेरेमनी हो रहा था तो उनको वरदान दिए, बोले प्रहलाद वर दो, प्रेरित की नहीं तो वर मांगो मुक्ति ले लो, ये ले लो सिद्धि मुक्ति कुछ ले लो। बोले धन्य है भक्तराज प्रहलाद, बारंबार प्रेरित करने पर भी, प्रलब्ध करने पर भी, बोले भगवान मैं बनियागिरी नहीं करूँगा, नहीं, अगर मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो ये मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मन में आपके सेवा के अलावा, भक्ति के अलावा कोई इच्छा ही ना आए। बोले हम लोग सोच में भी नहीं सोचे थे यही सब ही कोई मांग है। बोले मैं भी हैरान हो गया, ब्रह्मा सब हैरान होकर रहे, प्रहलाद जी की ऐसे उक्ति सुन करके सभी स्तब्ध हो गए। उन्होंने भगवत भक्ति के अलावा और कुछ चाहे नहीं, बोले मेरे मन में ऐसा अभिलाष ना आए ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी बाई मिस्टेक आगे चलकर मांग न चूँ किसी उसको, ना मेरे मन मांगने की इच्छा ही ना आए, ऐसी वर मांगे। धन्य है प्रहलाद, क्या बताऊं, भगवान स्वयं आपने श्रीमुख कमल से जिनका बड़ाई किए, समस्त भक्तों में शिरोमणि करके जिसको माने, आदर्श भक्त करके उपमान भक्त कर जिसको माने, और इस प्रहलाद के क्या कहूं उनके सामने, ये आपसे चुपचाप कहता हूं कि मिसेज बैठी है इधर, क्योंकि उनके फ्रेंड है ना, उनके सहेली है लक्ष्मी, तो इसलिए उनके सामने में कहती नहीं है, लेकिन कुछ नहीं लक्ष्मी पचमी कोई नहीं है उनके सामने, प्रहलाद तो प्रहलाद है, हम कोई उनके समान नहीं है। अगर भगवत कृपा के हिसाब देखा जाए, मैं ब्रह्मा मरुदगण देवगण गरुड़ादि पार्षदगण लक्ष्मी पर्यंत कोई भगवत कृपा के ऐसे प्राप्त नहीं जैसे प्रहलाद को मिला है, ये तो साक्षात प्रमाण है बता रहा। तो इसलिए है नारद जी, आपको अगर साक्षात कृपा पात्र को ढूंढना है तो वैकुंठ वैकुंठ जाकर टाइम खराब मत करो, सीधा प्रहलाद के पास। अब प्रहलाद का एड्रेस भी बता देता हूँ, प्रहलाद अभी और कोई नहीं है, प्रहलाद अभी अपने नाती के पास है, बलि के पास है, अपने नाती के पास रहता है, उनके पास हमेशा सुतल लोक में प्रहलाद जी है, उनके पास जाओ। लेकिन एक बात कहूँ, खबरदार, आप हमेशा जहाँ जाते हैं प्रशंसा गाते हैं प्रणाम कर डालते, खबरदार यहाँ प्रणाम नहीं करना, आप तो ऐसे उनको गुरु जी हो, आपको सब पता है। लेकिन प्रहलाद ऐसी उत्तम कोटि के भक्त है, वो किसका प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकते, बहुत दुखी हो जाएंगे। फिर आप जैसे प्रगत भक्त प्रणाम कर दे, बोले मैं कि आप कभी जाकर प्रणाम कर दे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। तो उनको ये गलती नहीं करना, अगर उनको सुखी करना चाहते हैं तो जाकर आलिंगन करना, उनको आशीर्वाद देना, तो मेरा भी उनके साथ कन्वे करना, मेरे शुभकामना देना उनको, और उनको मिलना देखना कैसे लाद के भक्ति के। तो प्रहलाद की भक्ति के वर्णन शंकर भगवान ने इसे वैकुंठ के वर्णन की उत्कर्षता, वैकुंठ से लक्ष्मी की उत्कर्षता, लक्ष्मी से फिर अल्टीमेटली दी सीक्रेट कान में चुपचाप बैठकर प्राइवेटली बताए कि प्रहलाद ही सबसे श्रेष्ठ भक्त है, हम ही तो कोई गिनती में नहीं उनके साथ में, ये इंद्र चंद्र वरुण कुछ नहीं, मैं कोई नहीं उनके साथ, लक्ष्मी साहब प्रहलाद दी बेस्ट है डिवोटी, तो इसलिए उनके पास है, देखना पड़े भगवान कृपा क्या है कैसे। तब नारद जी ने तुरंत भगवान शंकर से सुन करके सुतल लोक के लिए सीधा ऊपर जाना चाह रहे थे वैकुंठ, अभी डाउनवर्ड चलने लगे, सुतल जा रहे हैं कि प्रहलाद से मिलने के लिए। अब कल सुबह प्रयास करेंगे सुतल लोक प्रहलाद पहुँच करके नारद जी कैसे भेंट करते हैं प्रहलाद जी से, प्रहलाद क्या प्रमाण करते हैं कि ये कृपा के पात्र है या नहीं, ये सुनेंगे आप। हाँ, प्रहलाद के आर्गुमेंट क्या है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? बोलेंगे कुछ?
तो आप इसलिए पूछा रहे हैं कि वो तो